ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम्। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम्। उसके बाद क्या है? कभी कभी कोई कोई नित्य प्रसिद्ध श्लोक भी याद नहीं होता। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राणधन भगवान नंदन नंदन श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से महापुराण श्रीमद् भागवत के आश्रय में जीवन का परम सर्वोच्च लाभ भगवत सेवा एवं भगवत प्रेम प्राप्ति अर्थम हम आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण उत्सव प्रिय कहलाते हैं, उनको उत्सव बहुत अच्छा लगता है। गीत प्रियत्वात् सनातन गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को गीत गाना भी बहुत अच्छा लगता है। गीत गाना नाचना बोलना ये सब भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, उत्सव प्रिय। हमारे सनातन धर्म में और खास करके हमारे वैष्णवों में भगवान के अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे आने वाला उत्सव है श्री जन्माष्टमी, उसके पश्चात श्री राधाष्टमी, फिर वामन द्वादशी, फिर बारह चतुर्दश बारह द्वादशी शायद, हाँ नरसिंह चतुर्दशी, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन फाल्गुन पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, ये सब अनेक अनेक उत्सव, अद्वैताचार्य का, ऐसे बहुत सारे उत्सव हमारे वैष्णव परंपरा में मनाए जाते हैं। और हमारे समझ में ये बात आती है कि सर्वोच्च उत्सव जो वैष्णव परंपरा में मनाया जाता है वो है आने वाला उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। और वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण के इस प्रांगण में जन्माष्टमी महोत्सव तो कुछ विशेष रंग धारण करता है। आप सभी भक्तजन यहाँ जन्माष्टमी उत्सव मनाने के लिए धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हो, आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज से कल धर्मात्मा प्रभु का फोन गया मेरे पास रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास। महाराज जी के स्वास्थ्य के संबंधी बातें हुई तो उन्होंने हमसे पूछा कि महाराज जी कल क्लास देंगे कि नहीं देंगे। तो मैंने कहा वो तो देंगे नहीं, और शाम को 5:30 बजे कथा होगी, अब वो भी होगी कि नहीं होगी कोई निश्चितता नहीं है। तो 9:30 बजे बोले आज तो मैंने किसी को कहा नहीं, तो कल आप ही दे दीजिए। मैंने कहा जन्माष्टमी का महापर्व आने वाला है तो उसी पर कुछ कहा जाए तो अच्छा है। आगे मेरे ख्याल में आज से 7 दिन रहा, और सोमवार को जन्माष्टमी है ना, सोमवार तो मंगल है, आज मंगल तो 7 दिन। तो आज से जन्माष्टमी महापर्व हम लोग मनाने की तैयारी में हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव उसके संबंध में जो भी शास्त्र प्रमाण है, जो भी लीलाएं हैं, किंचित समय में श्रवण करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने सुना है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी शब्द का क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण अष्टमी माने अष्टमी की कोई तिथि है, वो चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष की तिथि हो। और जन्म माने प्रादुर्भाव। संस्कृत भाषा में जनी एक धातु है, उस धातु का अर्थ होता है प्रादुर्भाव, आविर्भाव, प्रकट होना। तो सीधा सा अर्थ होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कि भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव अथवा प्रादुर्भाव अथवा प्राकट्य, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और ये प्रादुर्भाव कब होता है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष अष्टमी की अंधियारी रात को होता है। कहां होता है? बिल्कुल एक अशुद्ध स्थान कंस का कारागार में होता है। स्थान के दृष्टि से और तिथि के दृष्टि से ये दोनों बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। अंधियारी रात हो, कारागार का वो देश हो, स्थान हो, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। परंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ जो भी जुड़ जाता है वो अच्छा हो जाता है। चाहे अंधियारी रात जुड़ जाए, चाहे कंस का कारागार जुड़ जाए, वो कंस का कारागार के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्तजन श्रद्धालु जाते हैं। और इस अंधियारी रात का उत्सव लाखों की संख्या में भक्त लोग मनाते हैं। यही जन्माष्टमी की विशेषता है। कब आए भगवान, किस लिए आए? भगवान के आने के पीछे जितने भी कारण हैं, भक्त लोग जो भी कारण बताते हैं, शास्त्र भी जो भी कारण बताते हैं, और भगवान जो भी कारण बताते हैं, उन्हीं कारणों के माध्यम से हम कुछ कुछ बातों पर स्पष्टीकरण कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव क्यों होता है, भगवान ने स्वयं बतलाया। बड़े मजे की बात है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है अष्टमी को, और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 3रे अध्याय में 8.5 श्लोक में जन्म लीला का वृतांत है, और भगवत गीता के 4.8 में भगवान के अवतार का रहस्य है। अष्टमी है, भगवत गीता का 4.8 भगवान स्वयं बताते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। सकल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव का रहस्य स्वयं श्री कृष्ण ही उद्घाटन करते हैं। अजोपि सन्न व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, भगवान अज हैं, भगवान भूतों के ईश्वर हैं, भगवान सर्व देवताओं के ईश्वर महेश्वर हैं। उन्होंने कहा अजोपि, भगवान अज हैं, सन अव्यात्मा, भगवान अव्यय हैं, अज हैं, अव्यय हैं। मम भूत महेश्वरम, वो सारे भूतों के चित जड़ जगत के वो स्वामी है, वो मालिक है। अजन का कदाचित जन्म संभव नहीं है। काल जिसकी शक्ति है, महाकाल के अंतर्गत सारे जीव मंडल आते हैं, महाकाल जिनको अपने गोद में सबको विनष्ट नष्ट भ्रष्ट कर देता है, उस काल को अपने अधीन में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। यही भगवान का विरुद्ध धर्माश्रय है। नाम है अजन्मा लेकिन लेंगे जन्म, नाम है अविनाशी और जन्म होने के बाद उनका अप्रकट लीला भी होती है। ये सब अद्भुत लीला है, इसलिए भगवान को विरुद्ध धर्माश्रय कहा जाता है। मैं यहां हूं, मैं यहां नहीं हूं। जो व्यक्ति कहता है कि मैंने भगवान को जान लिया है, वो व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता। और जो व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान को नहीं जानता, वो व्यक्ति मुझे जान सकता है। ये कितना विरुद्ध धर्म है। सामान्य व्यक्ति इस बात को कैसे समझ पाएगा। इसलिए भगवान से, भगवान के अंतरंग भक्तों से, भगवान के प्रामाणिक अधिकारी से ये सब सुन करके समझा जा सकता है कि भगवान के अवतार का रहस्य क्या है। क्या रहस्य है? सबसे पहले भगवान कहते हैं अजोपि सन्न व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान का प्राकट्य होता है, जीवात्मा का भी प्राकट्य होता है। ध्यान देना चाहिए, जैसे भगवान का प्रादुर्भाव है, जीव का भी प्रादुर्भाव है। जैसा मैंने कहा जनी शब्द का अर्थ होता है प्रादुर्भाव है, ऐसे जीवात्मा का भी प्रादुर्भाव होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण नहीं मरते, जीवात्मा भी नहीं मरता। किसकी मृत्यु नहीं होती? किसी ने किसी भक्त से पूछा कि तुम्हारी मृत्यु होगी, तो उस भक्त ने कहा अगर हमारी मृत्यु होगी तो कृष्ण को मरना पड़ेगा। क्यों कहा? क्योंकि यदि मृत्यु हमारे लिए सत्य होगी तो कृष्ण के लिए भी सत्य होगी, क्योंकि भगवान का हम है दिव्य अंश चिन्मय। जो हमारे लिए घटित होता है वो उनके लिए भी होगा, चिन्मय जगत की बात है। इसलिए प्रादुर्भाव दोनों के लिए है, पर अंतर क्या है? अंतर यही है मित्रों, संभवामि आत्म मायया। जीव जगत का, जीव की उत्पत्ति रजवीर्य के संयोग से कर्म फल के भोगने के लिए ही जीवात्मा एक देह ग्रहण करता है और देह ग्रहण करके देह को छोड़ता है। केवल कर्म फल जनित इनका ये जन्म है, पर भगवान का कर्म फल भोग नहीं होता। नित्य आनंदमय विग्रह, उनको कर्मों की आवश्यकता ही क्या है। जीवात्मा जब भी कर्म करता है केवल अपने लिए करता है। न बा अरे, इस संसार में कोई भी जीव अपने स्वार्थ की सीमा से आगे कर्म नहीं कर सकता, पर भगवान जो भी कर्म करते हैं अपने लिए नहीं करते, वो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के हित के लिए करते हैं, उनको ही आनंद देने के लिए करते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, हे प्रभु, संसार के उपकारी या तो आप हो सकते हो या तो आपके भक्त हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं हो सकता है। समग्र ब्रह्मांड केवल अपने लिए ही कर्म करता है, इसलिए भगवान के कर्म को लीला कहते हैं, जीवात्मा के कर्म को कर्म बंधन के अंतर्गत कर्म कहते हैं। अतः मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हमारा भी प्रादुर्भाव, जीवात्मा का प्राकट्य उनका भी प्राकट्य, ये सब सेम है, ये सब समान है, पर अंतर यही है, वो माया को अपने अधीनस्थ करके वो प्रकट होते हैं, जीवात्मा माया के अधीन होकर के प्रकट होता है, ये अंतर है। कब प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? वो हो इतना बड़ा होता है जो हमारे हिसाब की सीमा पार कर जाता है। ब्रह्मा का एक दिन में 14 मन्वंतर होते हैं, एक मनु में 71 चतुर्युग आते हैं और जाते हैं। ध्यान देना, एक ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं जाते हैं, इसको मन्वंतर कहते हैं। और एक मनु का काल होता है 71 चतुर्युगों का आवागमन का चक्र। क्या चतुर्युग है? सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये एक युग चक्र है। ये 71 बार आएंगे और जाएंगे तब एक मनु का कार्यकाल पूरा होगा। ऐसे 14 मनु हैं, स्वयंभुव मनु, स्वरोचिषा मनु, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। मैं समझता हूं कि 14 हो गए होंगे। तो 14 मन्वंतर, इसमें जो वैवस्वत मन्वंतर मैंने गिनाया, ये सप्तम मन्वंतर, इस सप्तम मन्वंतर का जो 28वां चतुर्युग का जो द्वापर युग, द्वापर का जो शेष भाग, उसी समय भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है। यह सब भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का समय। फिर से ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मन्वंतर, एक मनु का कार्यकाल है 71 चतुर्युग का आवागमन, उस ब्रह्मा के दिन में सप्तम मन्वंतर वैवस्वत मनु, उस मनु के 28वां चतुर्युग, उस 28वें चतुर्युग का द्वापर, और द्वापर अंत में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है। इसका प्रमाण श्री कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में देते हैं। वे कहते हैं,
अष्टविंश चतुर्युगा द्वापरे रसे से ब्रजेरा सहित हया कृष्णेर प्रकाशे।
ये चैतन्य चरितामृत।
अष्टविंश चतुर्युगा द्वापरे रसे से ब्रजेरा सहित हया कृष्णेर प्रकाशे।
अष्टविंश चतुर्युग द्वापर का शेष, और भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रजमंडल को अपने साथियों को साथ लेकर इस ब्रजधाम में प्रकट होते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का काल समय है ब्रह्मा जी के आयु काल में। क्यों प्रकट होते हैं? भगवान ने कहा परित्राणाय यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करई अनिति जाई नाही भरनी, सीदई विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान श्री कृष्ण वे कृपालु दयालु भगवान भक्तों की पीड़ा को हरण करने के लिए आते हैं और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। लेकिन ईमानदारी से हम आपसे कहना चाहेंगे, ये कारण हमें अच्छा नहीं लगता। आप पूछेंगे भगवान की बातें आपको अच्छी क्यों नहीं लगती? भगवान जो कहते हैं कभी कभी बातों को बहुत घुमा फेरा करके कहते हैं। भगवान कृष्ण सीधा नहीं बोलते, उनकी आदत एकदम टेढ़ी है। वो जब बोलते हैं तब वो टेढ़ा ही बोलते हैं, जब खड़े होते हैं तब टेढ़े ही खड़े होते हैं, जब देखते हैं तब टेढ़े ही देखते हैं। उनका सारा क्रियाकलाप बहुत उल्ट फेर वाला है। इसलिए आप देखिए, यदि शास्त्र का विचार करोगे, दुष्ट विनाश के लिए भगवान आते हैं। जिनके हृभंग मात्र से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जिनके पलक झपकते ही सृष्टि का विनाश होता है, प्रलय हो जाता है, उनको अवतरित होने के लिए क्या आवश्यकता है? भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान हर जीवात्मा के हृदय प्रदेश में विराजमान है। क्या भगवान रावण के हृदय में नहीं थे? थे कि नहीं थे? तो रावण को मारने के लिए यहां लड़ाई करने की क्या आवश्यकता थी? रावण का हार्ट अटैक करा देते, क्या दिक्कत थी? इसमें कोई समस्या है? क्या आप सोचते हो वो सब पतले पतले हो गए? कुंभकर्ण कितने मोटे तगड़े हैं, उनका वो जो हार्ट ब्लॉकेज होने में क्या दिक्कत है? घी इतना पीता था तभी ना इतना मोटा होता था। तो उनके हार्ट अटैक कराने में कोई दिक्कत भगवान को नहीं थी, वो करा सकते थे, ऐसा नहीं किया। जो भगवान के नासापुट से प्रकट हो सकते हैं, क्या वो रावण कुंभकर्ण कंस की बुद्धि में नहीं प्रकट हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? वो सबकी बुद्धि को बदल देते हैं। भगवान चाहेंगे तो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वो चाहेंगे तो दुष्टों की बुद्धि बदल सकती है। आपने सुना होगा हरिदास ठाकुर जिस गुफा में भजन करते थे, उनके गुफा के समीप में एक विषैला सर्प रहता था। उसके जहर के प्रभाव से सत्संगी जो आते थे वो पीड़ित होते थे। इस बात का जब पता चला, हरिदास ठाकुर ने उस सर्प से निवेदन किया, हे सर्प महाराज, आप कृपा करके इस स्थान को परित्याग कर दीजिए। हरिदास ठाकुर की प्रार्थना से वो सर्प प्रभावित तो होता है और सर्प सबके देखते देखते उस स्थान को परित्याग करके चला जाता है। जरा विचार करके देखिए, हिंसक पशुओं की बुद्धि को जो प्रभु बदल देते हैं, वो प्रभु इंसान के और असुर देवताओं की बुद्धि को बदल नहीं सकते। पर उनको आने की क्या जरूरत थी? बिना सहायच दुष्कृतम, लड़ना झगड़ना ये कौन सा काम है? छोटा सा नन्हा सा बालक, अभी उनकी आंखों की पलकें भी नहीं खुली है, 4-6 दिन का बालक। भगवान का प्राकट्य होता है अष्टमी तिथि के मध्य रात्र को, यदि हम गिनते हैं तो 6 दिन के बालक होते हैं चतुर्दशी तिथि को। विकट रूप वाली पुतना आती है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका समाप्त होता है। क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण मारने के लिए आते हैं? दुष्ट विनाशाय परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय। जरा विचार करके देखो, मान लीजिए आपके पास एक ग्लास में पानी है, उस पानी में एक कागज का टुकड़ा गिरा हुआ है, इसलिए पानी दूषित है। जब कागज का टुकड़ा आप वहां से हटा दोगे तो पानी शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? जब दुष्टों को आप मार ही देंगे, धर्म तो अपने आप प्रतिष्ठित हो ही जाएगा। जब रात्रि समाप्त हो जाती है तो अपने आप दिवस हो जाता है, फिर परित्राणाय साधु नाम का अर्थ क्या है, धर्म संस्थापन का क्या अर्थ है मेरे मित्रों? आपने इस पर सोचा कि नहीं सोचा? जब दुष्ट मर जाएंगे साधु तो अपने आप जीवित रहेंगे, फिर धर्म की क्या स्थापना करना है? आप जरा सोच के देखिए, विभीषण अपने आप में धार्मिक थे, रावण अपने आप में विधर्मी था। जब रावण मरा तो लंका दी गई विभीषण को, अपने आप धर्म की प्रतिष्ठा हो गई, फिर धर्म संस्थापन अर्थ है। ये सब केवल बाहरी बात है। भगवान श्री कृष्ण हमारी परीक्षा लेते हैं कई एक जगह में। भगवान ने कहा अश्वत्थामा को मारो, इनको छोड़ो मत, लेकिन उनका वो कहना केवल परीक्षा है। एवं परीक्षता पार्थ, पार्थ के हृदय में कितनी दया है उसको दिखाने के लिए भगवान ने ये आज्ञा दी। यदि पार्थ मार देता बेकार हो जाता, बेकार हो जाता। इसलिए गीता का ये जो मर्मार्थ है वो भगवान ने आपको दिया है, आप सोचिए समझिए क्या इसका अर्थ है। यदि यही अर्थ स्पष्ट हो जाता कुंती को इतनी सारी बात क्यों कहने की जरूरत थी? कुंती ने कहा तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम। हे प्रभु, आप भक्ति योग को विधान करने के लिए आते हो। कथम पश्ये मही स्त्रिय, हम तो स्त्रियां हैं, आपके अवतार का रहस्य को हम कैसे जान पाएंगे? आप परमहंसों को और ऊंचा बनाने के लिए आप आते हो, उनमें भक्ति को विधान करने के लिए आते हो। इतने में कुंती महारानी संतुष्ट नहीं होती, आगे कहती हैं, कोई कहता है कि जदुवंश को आप जदुकुल कमल को विकसित करने के लिए हे प्रभु आपका प्राकट्य होता है, कोई कहता है देवकी वसुदेव को आनंदित आह्लादित करने के लिए आप आते हो, कोई कहता है आप धर्म को विनाश करने के लिए आते हो, कोई कहता है आप साधुओं को आनंद देने के लिए आते हो। कई कारण, एक एक कारण आप विचार करके देखिए। दशम स्कंद के अध्याय 2 पे जाइए, देवता लोग कहते हैं नते भवस्य नते नते भवस्य नते नते भव भवस्य कारणम, अब बिना विनोदम तर्कयामहे। हे प्रभु, आपका ये अवतरित होना ये केवल विनोद मात्र है। देवता लोग कहते हैं हे अभव, आपका भव होना, आपका जन्म होना केवल आपका विनोद मात्र है। बिना विनोदम, ये केवल विनोद है। तो आप किस चीज को ग्रहण करोगे? आप कहोगे आज तक हमने गीता पढ़ी, इतनी बात पढ़ी, पर इतनी शंका तो हमारे मन में नहीं उठती, किसको ग्रहण करेंगे किसको छोड़ेंगे? इतना नहीं, और भी कारण है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अवतार का जो ये श्लोक हमको बहुत अच्छा लगता है, केवल यही श्लोक, एक श्लोक जो अवतार के संपूर्ण रहस्य को प्रकट कराने वाला है। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रिताः भजते तादृशी क्रीडां याश्रित्वा तत्परो भवेत्। ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। क्या भगवान के वचन के साथ सुखदेव गोस्वामी के वचन का कोई विरोधार्थ है? नहीं है। उदाहरण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा दुखालयम अशाश्वतम, आध्यात्मिक जगत का जो प्रारंभ होता है उसकी यही सीढ़ी है सज्जनों, दुखालय के सीढ़ी पर एक कदम रख करके सुखालय की ओर जाना होता है। लेकिन एक संत हुआ बिल्कुल भगवान के वचन को काट दिया। कौन सा संत यह है? श्री जमुनाचार्य महोदय कहते हैं विश्वम पूर्णम सुखायते। अब देखिए कृष्ण ने कहा दुखालयम, कृष्ण को यह कहने में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन यमुनाचार्य महोदय कहते हैं विश्वम पूर्णम सुखायते, हे कृष्ण आपकी सृष्टि पूर्ण सुखमय है। क्या यमुनाचार्य गलत कह रहे हैं? आप कौन सी बात ग्रहण करोगे, भक्त की बात ग्रहण करोगे या भगवान की बात? बोलो, जल्दी बोलो, कितने लोग भगवान की बात ग्रहण करोगे, कितने लोग भक्तों की बात? ये वाले बुद्धिमान है। भक्तों की बात ग्रहण करोगे तो नफा में रहोगे, भगवान की बात ग्रहण करोगे तो घाटे में जाओगे। भगवान ने कहा था मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, भीष्म ने कहा हे चक्रधारी हम तुमको अस्त्र धारण करा के ही रहेंगे, और भीष्म ने उनको धारण करवा दिया। इसलिए हमेशा भक्तों का पलड़ा भारी पड़ता है। बुद्धिमान वही है जो भक्तों का पक्ष लेता है। और अधिकतर माताओं ने हाथ उठाया भगवान को पक्ष में, ये तुम्हारी बेवकूफी है। अपने तो आप अपनी अल्प बुद्धिता का परिचय दिया, क्यों दिया भाई? आपके पति भक्त है, आप इतने सत्संग सुनते हो, तो भक्त के आश्रय में रहना सबसे अच्छा है। इसलिए विश्वम पूर्णम सुखायते, इसको भरोसा करो। आपने वो कथा नहीं सुनी जो प्रसिद्ध कथा है, कबीर दास जब रोने लगे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, लेकिन उनका जो चेला वहां था कमाल, वो ठहाका लाकर के हंसने लगा। तो बुढ़िया आई, देखा गुरु रो रहा है और चेला ठहाका लाकर के हंस रहा है। बूढ़ी को ये आश्चर्य हो गया, भाई बात क्या है, गुरु रोता है और चेला हंसता है। हाँ भाई दोनों ठीक है। बुढ़िया ने पूछा महाराज ये बताओ आपके दुख का कारण क्या है? कबीर दास ने कहा संसार में जो भी आया ये जन्म मरण के जो दो पाटन है उसमें पीसता चला गया, केवल दुख ही दुख है। कमाल ने कहा बिल्कुल दुख नहीं है, इसलिए उनका नाम था कमाल। कमाल का आदमी था वो। क्या उसने कहा गुरुदेव आप तो चलती चक्की को देखते हो पर उसके बीच में जो खूंटी है उसको नहीं देखते हो। बोले देखिए जितने दाने वो चक्की के पाटन के बीच में आ जाते हैं सब पिस जाते हैं, पर वही दाना बिल्कुल साबुत रहते हैं जो खूंटी के पास चिपक के रह जाते हैं। इसलिए संसार में वो पिसते चले जाएंगे, उनके रक्षा का कोई आधार नहीं है, पर उनकी रक्षा बिल्कुल हो जाएगी जो भक्तों के साथ चिपक करके रह जाएंगे। सुरक्षित वही रहता है। इसलिए यमुनाचार्य ने कहा विश्वम पूर्णम सुखायते, उनकी बातों को विश्वास करो। यदि हरिनाम जपते ही आपको सुख मिलेगा तो दुख कहां है? अभी वर्षा ऋतु चल रही है, पावस ऋतु, पावस ऋतु है। भागवत इसका प्रमाण देती है। क्या प्रमाण देती है? जल स्थलौ कस सर्वे नववारिणी सेवया अभिभ्रत रुचिरम रूपहम यथा हरिणी सेवया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वर्षा की नवीन मेघ से जब बूंदें गिरती हैं उस नववारी का, नववेग का, उस जलधारा का सेवन करके जल स्थलों का सब सुंदर होने लगे। बंदर का मुख कितना बेकार लगता है, जब पानी गिरता है तो उनका मुख भी सुंदर हो जाता है। ये पत्र, ये वृक्ष लताएं, ये जो पल्लव हैं, ये पल्लवित तो हो जाते हैं, और इनमें जो धूल जम जाती है और वर्षा की बूंदे गिरने से ये हरे भरे पत्ते चमकने लगते हैं, सुंदर दिखने लगते हैं। देखो गर्मी के दिनों में जब अंधड़ आती है उनकी धूल जमने से तो उनकी सुंदरता उतने नहीं बिखरती। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जल स्थल कस सर्वे नववारिणी सेवया। नया जल, नवीन जल, नवीन वर्षा की धारा सेवन करके सब सुंदर हो गए। ये धरती सुंदर हो गई, हरी 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 साड़ी से मानो धरती पट गई, सब सुंदर दिखने लगे। अभिभ्रत रुचिरम रूपम यथा हरिणी सेवया, भगवान हरि के सेवन करने से रूप भी सुंदर हो जाता है। अंतरात्मा, अंतर की भावनाएं, हृदय सुंदर हो जाता है। केवल चमड़े से कोई सुंदर नहीं हो जाता मेरे मित्रों, पुतना तो खूब सुंदरी बन के आई थी, पर महान कपटिनी थी वो, महान कपटिनी। एक मात्र रूप धारण करके एक बच्चे को घात लगा करके मार देना, इससे ज्यादा घातक भावना और क्या हो सकती है? ये कोई सुंदरता है? ये विभीषिका है? ये विभत्सता है? ये पूतना की क्रूरता है? मानो पूतना ने क्रूरता की सीमा लांघ गई और भगवान श्री कृष्ण दया की सीमा लांघ गए। एक तरफ दया की सीमा, एक तरफ क्रूरता की विभीषिका, देख लीजिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते नवबारी निसे, जैसे हरि निसेवन, हरि की सेवा करने से व्यक्ति सुंदर हो जाता है। हरि भक्तों में के अपने आप सुंदरता, बाहरी सुंदरता भी हो जाती है। यदि व्यक्ति हरि का भजन करता है, उसकी सुंदरता उसके चेहरे में ग्लैमर नहीं है, उसका 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 स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मानना चाहिए कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। वो हरि भजन का बहाना ले रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा करता है। आप जानते हो हाथी के पेट से यदि बकरा पैदा हो जाता है, दोनों के लिए घातक है। वैसे हाथी के पेट से बकरा पैदा नहीं होता, मान लीजिए हाथी के पेट से बकरा पैदा हो भी जाए तो दोनों के लिए अपमान है। बकरा सोचेगा सर हाथी के पेट से मैं ही पैदा हुआ, हाथी के रूप में हाथी का बच्चा पैदा होना चाहिए था। और हाथी हथनी भी सोचने में पड़ जाएगी कि मेरे पेट से बकरा कैसे पैदा हो गया। मेरे मित्रों, हरि सेवा करके यदि हमारी अंतरात्मा, हमारा रूप, हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे में दोष है, अन्यथा ये बात घटित नहीं होगी। यथा हरि निसेवया अविभ्रत रुचिरम रूपम, गोपियां कहां काजल लगाती थी, कहीं केस नहीं काटती थी, फिर भी भगवान को अनुपम सुंदर, अनुपम सुंदर। गृहे गृहे ब्रज बधु कदम्बा, कदम्बा माने इस विश्व की सर्वोच्च सुंदर स्त्रियों को कदम्बा कहा जाता है। अस्तु, इसलिए भक्तों का पक्ष ज्यादा भारी रहता है। अतः सुखदेव गोस्वामी जो बात कहते हैं वो भगवान की बात से ज्यादा उच्चतर है। क्या कहते हैं? अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रितं, केवल जीवों पर कृपा करने के लिए वो 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 करुणा के वरुणालय भगवान, वो आनंद के सिंधु रस सिंधु श्री कृष्ण चंद्र का आगमन होता है। यही एकमात्र उनके अवतार का कारण है। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रितः, वो अपने बच्चों को, अपने नन्हे मुन्ने भक्तों को केवल आनंद देने के लिए ही आते हैं। भक्त स्वाभाविक मूर्ति प्रिय होते हैं। भगवान को निराकार, भक्तों को निराकार बाद अच्छा नहीं लगता। जिस प्रभु खा नहीं सकता, जो प्रभु हमारे साथ लीला नहीं कर सकता, जो प्रभु हमारे साथ बातें नहीं कर सकता, जिस प्रभु के साथ हम हास प्रयास नहीं कर सकते, जिस प्रभु को हम अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, जिस प्रभु के साथ हम मित्र की भांति लीला नहीं कर सकते, वो ब्रह्म से हमारा क्या नाता है? गोपियों ने कहा उद्धव, तुम्हारा ब्रह्म अगर भूत बनता है, उस भूतों से हमारा क्या लेना देना है? हम तो वो माखन चोर से प्यार करना चाहती है जो हमसे छीन करके माखन खा जाए। विशेषता है। इसलिए भगवान ने भी यह दावा किया कि मेरे भक्त मेरी पूजा करते हैं। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं वो दिव्य श्याम श्याम सुंदर आकार से विशेष आकृष्ट रहते हैं। अर्जुन ने यही तो पूछा, एवं सतत युक्त्वा ये भक्ता त्वं परिउपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के जुगवित्तमः। भगवान ने साफ साफ कहा, मयाविष्य मनोजे माम नित्य युक्त्वा उपासते श्रद्धया परयापेता स्ते मे युक्त तमा मतः। हे भक्त, हे पार्थ, जो लोग अनन्य भाव से मेरे श्याम सुंदर रूप के प्रति आकृष्ट होकर अनन्य प्रेम से मेरी आराधना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे श्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं। मेरे मित्रों, केवल एक ही कारण है, अनुग्रहाय भूतानां। भगवान के नक्श से सिक्त केवल अनुग्रह है, केवल कृपा है, केवल अनुकंपा है, केवल केवल उनके भीतर आशीर्वाद है। अनुग्रहाय भूतानाम। मानुषी देहमाश्रित मनुष्य मनुष्य के भाव को ही समझ पाता है। भजते भजते के आत्मनिपद पद है। भगवान श्री कृष्ण अपने में आनंद लेते हैं। भगवान आत्माराम ये वेद माता कहती है, वेद कहता है एक है, एक वो प्रभु। आनंद लेने के लिए द्विधा दो भाग हो गए। थोड़ा हंसेंगे खेलेंगे बातें करेंगे, ये वेद का प्रमाण है। एक थे, जब प्रलय हो जाता है प्रलय के बाद तो वो एक ही रहता है ना, एक वो अहम। भगवान कहते हैं प्रलय के बाद तो एक ही रहते हैं, पर एक में वो आनंद नहीं आता उनको, वो अपने को विभाजित करते हैं दो में पांचों में विस्तार में, ऐसे जीवात्माओं को लेकर के वो अपने में आनंद लेते हैं। इसलिए अपने पुत्रों को केवल आशीर्वाद बांटने के लिए मित्रों अनुग्रहाय भूतानाम मानुषी देहमाश्रित भजते आनंद लेते हैं। तादृशी क्रीड़ा ऐसी क्रीड़ा करते हैं या श्रुत्वा जिनका श्रवण करके तत्परो भवेत, अर्थात जीवात्मा का मन भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाएगा, उनको अच्छा लगेगा। भगवान ऐसे थे, ऐसे अद्भुत लीला विहार करते थे बस सुनने मात्र से। तत्पर भवे, तत्पर शब्द का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण का आश्रय को ग्रहण कर लेगा, भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानेगा। केवल केवल प्रार्थना सभा में जाकर के केवल एक फॉर्मालिटी नहीं मेंटेन करेगा कि तुमैव माता च पिता तुमैव तुमैव बंधुश्च सखा तुमैव तुमैव विद्या द्रविणम तुमैव तुमैव सर्वम मम देव देव। वाकई वास्तव में वो अपने में ग्रहण करता है, हे कृष्ण आप ही मेरे सर्वस्व हो, आपके बिना मैं किसी को कुछ भी नहीं जानता। लक्ष्मण की भांति लक्ष्मण ने साफ साफ श्री कृष्ण से श्री राम से कहा आप बन जाते हो मैं आपके साथ जाऊंगा। राम ने कितना भी समझाया लक्ष्मण ने नहीं माना, उल्टा कहा कि अच्छा होगा कि दशरथ को मार दिया जाए। ऐसी ऐसी बात है, ये प्रेम के पराकाष्ठा है। ईश्वर हमारे हैं, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्राणाधर, तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, और आगे जब जब मैं जहां भी जाऊंगा तुम हमारे होके ही रहोगे। ये जो निष्ठा है, ये जो दृढ़ता है, बस इसी को केवल दर्शाने के लिए, जीवात्मा में प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान का अवतरित होता है। और वो उस तिथि में आए, उस काली अंधियारी तिथि को ही आए। बस 7 दिन के बाद, बीच में और 6 दिन बच गए, भाद्र पक्ष का अष्टमी, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आने वाली है। अष्टमी, अष्टमी के मध्य रात्र, देखिए प्राय अष्टमी जाने वाली है। आप देखिए राम जी का प्राकट्य भी नवमी को है, एक प्रकार से कृष्ण का प्राकट्य भी नवमी को ही है। कैसे मध्य रात्र एक प्रकार अष्टमी जा ही रही थी। ये अष्टमी जो तिथि है, ये अष्ट प्रकृति जो है, ये अष्ट प्रकृति के अंतर्गत जीवात्मा जब तक है उसको भगवान का अनुभव कदापि नहीं होगा। मायार अतीत हैले है आमार अनुभव, चैतन्य चरितामृत। जब तक माया के अंतर्गत जीवात्मा रहता है तो उसको भगवान का अनुभव नहीं होता। मायातीत हैले है आमार अनुभव, भगवान की अष्ट प्रकृति यही है। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धिरे बचा, और आखिर में है ये अहंकार है। अहंकार हमारे और भगवान के बीच में एक महान प्रतिबंधक है। अष्ट प्रकृति के अंतर्गत ये आता है, इसलिए आप देखिए भगवान का प्राकट्य ये अष्टमी के बिल्कुल आखिरी सीमा में ही है, मध्य रात्रि में बिल्कुल हो रहा है। नरसिंह चतुर्दशी में हो गए, आगे चलो ये सब 8 के पार है। चतुर्दश माने 14, द्वादश माने 12, त्रयोदशी माने 13, पूर्णिमा तो 15 है ही है। आगे आगे आगे, वैसे ये कोई अर्थ नहीं हो सकता, भगवान जब भी आए जहां भी आए वो पवित्र हो जाता है। जिस समय आते हैं वो महाकाल, जिस महाकाल को कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आए वो काल अपना समस्त समस्त शुभ संभार को भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करता है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन यही एवा जन्म जन्मरख्यम शांतरिक्ष ग्रह तारकम। भगवान श्री कृष्ण उस गहन अंधियारी रात में आते हैं, पर उस काल भगवान श्री कृष्ण की अगवानी करने के लिए अपना समस्त सौंदर्य समस्त मंगल को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है। यदि भगवान नहीं आते काल को महा दुख होता, सभी लोग काल के नाम सुनकर के डर जाते हैं, पर काल जो भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रकट हुआ था वो एक अनुपम काल था। उस मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र आने की कोई संभावना नहीं है, पर सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप से रोहिणी नक्षत्र का नाम नहीं ले रहे। अजन जन्मरक्ष, अजन जन्म माने जिनका जन्म नहीं होता उनको अजन कहते हैं। अजन से जो उनके नाभि से जो कमल जन्म हुआ, उस कमल पर जो आए प्रकट हुए उनको ब्रह्मा कहते हैं, उनको कमल जनी अथवा कमल जन्म अजन जन्म कहते हैं। उस अजन जन्म के जो रिक्ष है जो तारा है उनको रोहिणी कहते हैं। 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी द्विजा अश्लेषा पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ आदि भद्राकृति का आदि जो 27 नक्षत्र हैं वो 27 नक्षत्रों में से सबसे उत्तम नक्षत्र माना जाता है रोहिणी नक्षत्र। पर प्रत्येक जीवात्मा को अपने नक्षत्र छिपाना चाहिए, स्व नक्षत्र स्व राशि, अपनी आयु, अपने पास में कितना धन है, कितना अपमान हमको हुआ है, ये सारी चीजों को दुनिया में प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति करता है तो उनका काफी अमंगल होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रियता सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी जब श्री कृष्ण का वर्णन करने जा रहे हैं वो कहते हैं अथ सर्व गुणोपेता काल परम शोभन यही जन जन्मरक्षम शांतरक्ष ग्रह तारकम। सूर्य आदि नवग्रह अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। ये कभी शांत होते हैं, कभी वक्र होते हैं, कभी कुछ होकर जीवात्मा को अपने कर्म फलों को भोग कराते हैं। जब अच्छी गति में चलते हैं तो जीवात्मा का मंगल होता है, जब वक्र गति से चलते हैं तो जीवात्मा का अमंगल होता है। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है। सन्नी 7:30 सुनकर के सबका हृदय कांपता है। मेरे मित्रों, सनी 7:30 आपका क्या बिगाड़ेगा यदि आप भगवान का भजन करते हो, क्योंकि भगवान भजन करने वालों के लिए हनुमान जी ने अभय दिया, उन्होंने सनी को अपने बगल में दबा के बैठा, बोले तुम भक्तों के पास नहीं जा सकते। और कोकिल वन में देखो सनी महाराज विराजमान है। सनी तो उनको सताता है जो पहले सारे विधर्म अधर्म कर चुके हैं, बाद में सनी महाराज को पुकारने से क्या होगा, वो तो अपने आपको फल देंगे ही देंगे। इसलिए मेरे मित्रों, सारे ग्रह मंडल शांत हो गए और ब्रह्मा जी के जो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है यही बाजन जन्मरक्षम शांतरिक्ष ग्रह तारकम। भगवान रोहिणी नक्षत्र को मानो सद्भाग्य देते हैं, महाकाल को भाग्य देते हैं, चलो तुम्हारे अंदर हम प्रविष्ट हो जाते हैं, तुमको कोई बुरा नहीं कहेगा। वो काल अपने समस्त डरावना प्रकृति को छुपा देती है। सकाल का, सवेरे का, प्रातः काल का, भोर का मंगल गीत है, सायंकाल का वो आरतिक और हवन आदि, नदियों का स्वच्छ जल, वो पक्षियों का गुंजार और जो भी ब्राह्मणों का ब्राह्मणों की वो वेद ध्वनि, सब एक साथ मिलित हो जाते हैं। वो हेमंत शिशिर बसंत, ये सबकी जो गुणवत्ता है वो भाद्रपद के वो कृष्ण पक्ष वो अंधियारी रात को सब सम्मिलित हो जाते हैं। आप वो 8:30 श्लोक को पढ़िएगा और जन्माष्टमी के उत्सव को मनाने के लिए खूब तैयारियां करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। हरे कृष्ण। मैंने इसकी तो व्याख्या नहीं की। हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि कल से जन्माष्टमी की आज से कथा शुरू हुई। आज तो मैंने केवल अवतार का थोड़ा बहुत उपक्रम किया, कल जन्माष्टमी के जो जो भगवान श्री कृष्ण की लीला आगामी वक्ता आपको सुनाएंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। संवित भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे।